समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी, बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं धर्मेन्द्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नरेश मागो। नरेश, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार धर्मेंद्र, गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। कैंपेनिंग फॉर द थर्ड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन इज टू एंड दिस इवनिंग।
केंद्र ने कहा खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा के संबंध में भारत के मानदंड वैश्विक स्तर के।
Security forces detained 6 suspects for questioning in connection with the attack on the Indian Air Force convoy in Poonch district of Jammu and Kashmir.
चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का देश भर में आयोजन।
And in IPL cricket, Punjab Kings lock horns with Chennai Super Kings, while Lucknow Super Giants to face Kolkata Knight Riders this evening. Listeners, time now for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we will talk about World Hand Hygiene Day as well as World Laughter Day. World Hand Hygiene Day is observed on May 5 every year. This global event aims to promote the importance of hand hygiene in preventing the spread of diseases and infections. Every year, World Hand Hygiene Day encourages people to increase adherence to hand hygiene. Proper hand washing with soap and water is an effective way to promote good health by preventing several potential health conditions.
और नरेश, जब हम थोड़े समझदार होते हैं तो स्कूल और घर में खाने से पहले हाथ धोना सिखाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि हम सभी को हैंड वॉश करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथ धोए बिना ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली बार आखिर कब वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया था, तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत पहली बार साल 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हाथ की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।
And also, Dharmendra, the pandemic, COVID pandemic, it also increased the awareness in people on how important it is to keep your hands washed and clean all the time. And if you touch a surface, you should ensure that you wash your hands with soap and water. And each year, the WHO, that's the World Health Organization, promotes this campaign, the Save Lives, Clean Your Hands campaign, which was launched in 2009. The aim was to bring people together in support of hand hygiene globally. Now, the theme of this year is promoting knowledge and capacity building of health and care workers through innovative and impactful training and education on infection prevention and control, including hand hygiene.
और ये दिन बीमारियों और संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए हाथ की स्वच्छता और अच्छी हाथ स्वच्छता प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और इसका उद्देश्य खराब स्वास्थ्य की रोकथाम में हाथ की स्वच्छता के महत्व को उजागर करना है। ये लोगों को अच्छे हाथ स्वच्छता व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, जो उन्हें संक्रमण और बीमारियों से बचा सकता है।
The COVID pandemic saw a focus on education and information on hand washing aimed both at people working within the health sector as well as for the general public. there was a proliferation of public health messages through various sources about the importance of hand washing and the correct techniques for hand washing. Now, our hands are a critical factor, actually a vector for transmitting microorganisms. The cross-transmission of these organisms to others occurs when we fail to wash our hands effectively. Within healthcare systems and services, there have been almost continual awareness campaigns in place to encourage hand washing among health service personnel, patients, and visitors. Now, several infectious diseases can be spread from one person to another by contaminated hands. These diseases include gastrointestinal infections such as salmonellosis and respiratory infections such as influenza, colds, and coronavirus. Washing your hands properly with soap and water can help prevent the spread of germs like bacteria and viruses that cause these diseases. Some forms of gastrointestinal and respiratory infections can cause serious complications, especially for young children, the elderly, or those with a weakened immune system. Now, there's a way to wash your hands to make them disinfected. So, the first one is to wet your hands with clean running water, turn off the tap, and apply soap properly. Lather your hands and apply enough soap to cover your hands and wrists. Do not miss the back of your hands, between fingers, and under your nails. Rub at least for 20 seconds. Now open the tap and rinse your hands and dry them with a clean towel. Now, this is how to wash your hands. Now, when to wash your hands is also equally important. You must wash them before and after you consume food and drinks, or you prepare food, taking medicine, or treating a wound, meeting or taking care of someone sick, coughing, sneezing, or blowing nose, using the toilet, changing diapers, or handling a child, after throwing garbage, after animal feed, or animal waste.
Aur Naresh, jeevan bachaye, apne haath saaf karein. इस नारे के साथ इस दिवस में स्वास्थ्य सेवा में हाथ की स्वच्छता में सुधार के महत्व पर ध्यान दिया गया है, जिसमें WHO इन प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करता है। अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो आज से धोना शुरू कर दें, ताकि हम आने वाली बीमारियों से बच सकें, क्योंकि हाथ न धुलने से भी शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
एंड इम्पोर्टेंटली, इफ यू डोंट हैव द प्रोविजन टू वॉश योर हैंड्स फॉर सम रीजन, डू कैरी सैनिटाइजर्स विद योरसेल्फ सो दैट यू कैन सैनिटाइज योर हैंड्स व्हेन यू नीड टू। Today is also World Laughter Day. Laughter, often called the best medicine, stands rightfully up to its name when it comes to mental health and overall well-being. Beyond its ability to simply make us feel good and lighter, it offers a myriad of benefits that contribute to the holistic well-being of a person. So if someone played an April Fool's joke on you and it made you laugh, thank them because they did your mental health a favor. Every year, on the first Sunday of May, which is today this year, we celebrate World Laughter Day. It's a day to focus on the amazing power of laughter to uplift and heal us.
हम सभी जानते हैं कि हंसना अच्छा लगता है, लेकिन विश्व हंसी दिवस हमें इसके पीछे के विज्ञान की भी याद दिलाता है। हंसी तनाव को कम करती है, दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत करती है और हमारे समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। ये दिन हमें खुलकर बात करने, कुछ हंसी मजाक करने और शायद कुछ हंसी योग अभ्यासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व हंसी दिवस एक सरल कार्य हंसी के माध्यम से खुशी फैलाने और शांति को बढ़ावा देने के बारे में है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The heat wave condition prevailing in Tripura for the last several days is not only affecting human beings but also the animals. The soaring rise in temperature has therefore prompted the Sipahi Jala Zoo authorities to take urgent action to ensure that wild animals such as the king of the jungle lion and big cats such as tigers and leopards do not fall sick due to harsh summer. Our Agartala correspondent has this report.
The stinging effects of global warming is hitting the mankind hard, and even animals are no exception to it. The Sipahi Jala Zoo, the only zoo in Tripura which has several endangered species such as lions, tigers, leopards, exotic birds, bears and hippopotamus, is seen taking requisite actions to ensure that animals in their enclosure do not fall ill due to depleting electrolyte levels. As part of the measure to provide some respite to the animals from soaring heat coupled with high humidity, the zoo authority has been splashing gallons of water in the enclosure of lions, tigers, leopards, and are also keeping ice blocks in the cage so that the intensity of heat is reduced. we spoke to the director of Sipaijala Zoo, Bishwajit Das, and this is what he had to say.
We are taking a lot of measures actually. So like giving the proper high water content fruits to the animals and spraying of water regularly and keeping the service room that we call night shelter cool and spraying water. Even we are giving birth to the our zoo animals. We are doing our best. So far animals are good now.
The veterinary doctor of the zoo, Keshav Debnath, said apart from keeping ice blocks, splashing water and installing coolers in the enclosure of tiger, a specific dietary pattern is followed to see that animals do not face any adverse effect after consuming the food.
Particularly, we arrange ice cube for particular for every enclosure, every animals like lion, tiger, leopard, including including omnivore animals like bear, monkeys also. Then they change some food items also. We included like watermelons in the food diets like omnivore animals and herbivore animals.
As the environmentalists observe that the rise in temperature is just a tip of an iceberg, it is time for humans to get into a combat mode by planting more trees and reducing the emission of greenhouse gases. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
From Tripura to Goa, Indian Institute of Technology Goa recently organized the Indo-French Workshop on Marine Science and Technology, Collaborative Research, Directions and Outcomes for India and France from 17th to 19th April. The workshop was organized with the aim to energize activities that will contribute to the country's blue economy plans. Our Panaji Goa correspondent has more in this report.
Indo-French Workshop on Marine Science and Technology at the IIT Goa during the 17th to the 19th April was funded by the Indo-French Center for Promotion of Advanced Scientific Research, that is CEPIPRA, which is a joint Indo-French body funded by the governments of India and France. Multiple French institutions like Ecole Novelle, UBO, ENIB and ENSTM Detain, Brest Technopole and companies like Excel participated in the workshop. Extensive and detailed discussions were held during the workshop, which would help strengthen the blue economy of the both the countries.
Participants in the joint workshop emphasized the IIT Goa's active engagement in international platforms such as CTech Week 2022 in France. Ongoing projects with French institutions supported by both CEPIPRA and the French Embassy in India were highlighted, and they also discussed scholarship and higher study opportunities in France during the workshop. Appreciating the workshop's outcome, Professor Nitin Seth, director of CEPIPRA, hailed the central government's role in fostering Indo-French collaboration in science and technology. He lauded discussions on joint academic programs related to the blue economy, emphasizing the potential to strengthen scientific and industry-ready manpower in both countries.
The workshop culminated in the formation of GOAT, that is Goa Atlantic Partnership, spearheaded by the IIT Goa, comprising several academic and research institutions from the Brest region of the France. The Indo-French Workshop on the Marine Science and Technology at the IIT Goa serves as the testament to the strengthening the Indo-French ties and underscores the commitment of both the nations to advancing the scientific cooperation for the benefit of the global maritime community. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashwani Panaji, Goa.
In our series covering profiles of key constituencies across states and union territories during the Lok Sabha elections, today we bring you a report on the Rajkot Lok Sabha constituency in Gujarat.
Rajkot Lok Sabha constituency is one of the high-profile seats in Gujarat, especially in the Saurashtra region. The constituency comprises seven assembly seats of Rajkot and Morbi districts. The Rajkot Lok Sabha seat held its first election in 1962, with the Congress Party securing victory. Since 1989, the Bhatiya Janata Party has been consistently winning Rajkot seats, except in 2009 when BJP's Kiran Patel lost to Congress Kuwarji Bavaria. Mohan Kundaria has been winner of this seat from the last two terms, in 2014 and 2019. This year, BJP has fielded senior leader and union minister Parshottam Rupala on the seat. He will face senior Congress leader Paresh Dhanani. There are total 21,13,273 voters in this constituency who will decide the political fate of the nine candidates in the fray. All eyes are on this high-profile seat. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
और अब हम कर्नाटक की गुलबर्गा सीट की जानकारी दे रहे हैं, जिसे अब कलबुर्गी कहा जाता है। इस क्षेत्र को भीमा नदी और तूर दाल की खेती के लिए जाना जाता है। कलबुर्गी हाथ से बुने कपड़ों और इल्कल साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, इस सीट पर 7 मई को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र उत्तर कर्नाटक में स्थित है और 1991 वर्ष में इसकी रचना हुई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पूरा राजनीतिक जीवन यहां बीता है। उन्होंने यहां से 2019 और 2014 में जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में खड़गे के दामाद राधा कृष्ण दोडमणी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी से हाली सांसद डॉक्टर यादव उम्मीदवार रहेंगे। इस क्षेत्र में 22,68,944 मतदाता सूची में हैं। मई 7 तारीख को चुनाव के लिए 2,167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
Listeners, time now for us to take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था।
जैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे।
सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर जैल कर लिया था।
1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने।
1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे।
हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं।
25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे।
नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।
जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं।
हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे।
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था।
5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं।
हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया।
रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में कालापानी की कठोर सजा सुनाई गई।
5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी भारत के इस महान सपूत को नमन करता है।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Four Indian boxers, Akash Gorkha, Vishwanath Suresh, Nikhil and Preet Malik advanced into the Under-22 men's finals at the ASBC Asian Under-22 and Youth Boxing Championships 2024 in Astana, Kazakhstan last night. This remarkable achievement adds to India's historic tally of 43 medals secured across categories. Senior national champion Akash extended his dominating run in the 60-kilogram category with a 5-0 win over Ilyasov Sayad of Uzbekistan in the semi-finals.
और धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 5 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। आज एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में होगा। और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक और हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के जाने माने लेखक गोरख प्रसाद को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 5 मई 1961 को वाराणसी में उनका निधन हुआ। वे ज्योतिष और खगोल के प्रकांड विद्वान थे। गोरख प्रसाद काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में विज्ञान परिषद के अध्यक्ष थे। वे बनारस मैथमेटिकल सोसाइटी के भी अध्यक्ष रहे हैं। इन पर जो है उनकी कृतियां विश्व प्रसिद्ध रही हैं, निहारिका, आकाश की सैर, सूर्य सारणी, चंद्र सारणी, भारतीय ज्योतिष का इतिहास। और उनको अगर कहें तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा से पुस्तक सौर परिवार पर डॉक्टर छन्नूलाल पुरस्कार, गिब्स पदक और रेडिचे पदक मिले।
Today we are also remembering Naushad Ali, who passed away on this day in 2006, a great Indian composer, widely considered to be one of the greatest and foremost music directors of the Hindi film industry. Naushad is particularly known for popularizing the use of classical music in films. His first film as an independent music director was Prem Nagar in 1940. His first musically successful film was Ratan in 1944. Followed by a massive 35 Silver Jubilee hits, 12 Golden Jubilee hits and 3 Diamond Jubilee mega successes. Naushad was conferred the Dada Saheb Phalke Award and the Padma Bhushan in 1981 and 1992 respectively for his contribution to the Hindi film industry.
और सन 1940 से 2006 तक उन्होंने अपना संगीत का सफर जारी रखा। उन्होंने अंतिम बार 2006 में बनी ताजमहल के लिए संगीत दिया। अपने अंतिम दिनों तक वे कहते थे, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अभी तक न मेरी संगीत की तालीम पूरी हुई है और न ही मैं अच्छा संगीत दे सका। और इसी मलाल के साथ वे 5 मई 2006 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीतों की झलक।
देखेंगे तीरे
और भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ की भी आज पुण्यतिथि है। उनका निधन नोएडा में 5 मई 2017 को हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनने का जो पहला श्रेय है उनको ही प्राप्त है। वो देश की प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। वे 2000 तक विधि आयोग में रहीं और हिंदू सेक्शन 1 में संशोधन का श्रेय भी उन्हीं को जाता है।
Paying tributes to Gulshan Kumar on his birth anniversary today. He is a great music producer and film director and producer and a businessman who was the founder of Super Cassettes Industries Limited under the T-Series music label in the Bollywood industry. After founding T-Series, Dua established it as a leading record label in the 1990s. He started his own audio cassette operation known as Super Cassette Industries, which turned into a profitable business.
और अगर उनकी बात करें तो उन्होंने जो है कई फिल्मों का निर्माण भी किया। आइए उनके कुछ फिल्मों की जो गीत हैं, सुप्रसिद्ध गीत हैं, उनकी कुछ झलकी सुन लें।
जी Sending happy birthday wishes to Christopher Morris Brown, an American singer, songwriter, rapper, dancer and actor, one of the most prominent artists in R&B music, being credited as an evolver of the genre and often being referred to by the contemporaries as the king of R&B. Let's listen to this song, Run It, sung by him.
Okay, check it out. It's Santana again, stepping now. One of them brand new big boy toys. I do big boy things, I make big boy noise. Cause I know what girls want. I know what they like. They wanna stay up and party all night. So bring a friend.
कार्टूनिस्ट आबिद सुरती का जन्मदिन है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हिंदी गुजराती साहित्यकार और कार्टून पात्र डब्बू जी के सर्जक हैं। आबिद सुरती चित्रकार, कार्टूनिस्ट, व्यंगकार, उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। विभिन्न कला विधाएं उनके लिए कला और जिंदगी के ढर्रे को तोड़ने का जरिया रही हैं। उनकी ये कोशिशें उनके चित्रों में नजर आती हैं। स्वभाव से यथार्थवादी होते हुए भी वे अपनी कहानियों में मानव मन की उड़ानों को शब्दांकित करते हैं।
Saying happy birthday to Nilesh Mishra, who is a journalist, author, radio storyteller, scriptwriter and lyricist. He was born on 4th May 1973 to Shiva Balak Mishra and Nirmala Mishra. Today is also the happy birthday of Krishna Punya, an international gold medalist, Indian discus thrower, 3 times Olympics participant, Padma Shri and Arjun Award recipient, and she participated in 2004, 2008 and 2012 Olympic Games. In the 2010 Delhi Commonwealth Games, she won a gold medal.
और समरेश जंग भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज यानी शूटर हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 1970 में हुआ था। 2006 में मेलबर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय निशानेबाज समरेश जंग को इन खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत के किसी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया हो। उन्होंने ये पुरस्कार जीतकर एक नया इतिहास रच डाला था।
Today is also the birth anniversary of Mark Zubair, who was an actor who appeared in many British and Hindi films and television dramas. He was born as Zubair Ahmed Siddiqui on 5th May 1944 in Lucknow, came to Britain with his family in 1951. Joining his father, who had moved 2 years earlier as a BBC radio producer. He had a small role in Coronation Street, playing Mr. Khan in the 1990s, but he also starred in Hindi films, Ye Nazdeekiyan in 1982 and Kamla in 1984, and had a leading role in Katla. Zubair died on 28 May 2003 in London, England.
परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह का आज ही के दिन 1937 में जन्म हुआ था। कर्नल होशियार सिंह को वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाने और दुश्मन को धूल चटाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए धर्मेंद्र मणि राजेश और नरेश मागो को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।